गीता माधुर्य, लेखक परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज।
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। 14वां अध्याय।
श्री भगवान बोले, जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा एक। उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान? उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। दो, महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं? हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव चेतन रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः ये कौनते अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं। 3 से 4 टिप्पणी। महासर्ग के आरंभ में जीवों का अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना ही भगवान के द्वारा बीज स्थापन करना है। आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? हे महाबाहो, सत्व रज और तम ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देह को देह में बांध देते हैं। 5 सत्व गुण का क्या स्वरूप है और वह देह को देह में कैसे बांधता है भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देह को देह में बांध देता है। 6 रजोगुण का क्या स्वरूप है और वह देह को कैसे बांधता है? हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ, वह कर्मों की आसक्ति से देह को देह में बांधता है। 7 तमोगुण का क्या स्वरूप है और वह देह को कैसे बांधता है? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह को देह में बांधता है। 8 बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? हे भारत, सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। 9 तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। 10 बड़े हुए सत्व गुण के क्या लक्षण होते हैं? जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। 11 है बड़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, स्पृहा आदि की वृत्तियां बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। 12 है बड़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं? हे कुरुनंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता समझने की शक्ति नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तब ऐसी वृत्तियों के बढ़ने पर समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। 13 है, गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है। सत्व गुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्यात्माओं द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल उत्तम लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनि में जन्म लेता है। 14 से 15 है, इन गुणों से ऐसी गतियां क्यों होती है भगवान। कारण कि गुणों की वृत्तियां जैसी होती हैं वैसे ही कर्म होते हैं, इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूर्ता होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। 16 है, वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या है। तीनों गुण हैं। सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद मोह तथा अज्ञान पैदा होता है। 17 है, इन तीनों गुणों में स्थित रहने वालों की क्या गति होती है भगवान। सत्व गुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित रहने वालों का मनुष्य लोक में जन्म होता है और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों आदि में जाते हैं। 18 है, तो फिर आपको कौन प्राप्त करता है। जो मात्र कर्मों के होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तथा वह विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। 19 से 20, अर्जुन बोले, हे प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है। भगवान बोले, हे पांडव, सत्व गुण की प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की मोह, इन तीन वृत्तियों के आने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता और इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह रहता है गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं चेष्टा रहित है। गुणातीत मनुष्य का आचरण कैसे होते हैं भगवान। उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है तथा सुख दुख में मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में शरीर इंद्रियों आदि के प्रिय अप्रिय में नाम की निंदा स्तुति में शरीर के मान अपमान में शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है और जो कामना आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता वह गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होने का उपाय क्या है। जो मनुष्य अव्यभिचारी अनन्य भक्ति योग से मेरा ही भजन करता है वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। 21 से 26, भक्ति तो करे आपकी और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे भगवान। भैया, ब्रह्म अविनाशी अमृत सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम हैं। 27, 14वां अध्याय समाप्त। गीता माधुर्य, लेखक परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आश्रय आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अजेय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। एक, यह संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोंपले हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कोंपलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। दो, इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादात्म्य, ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। 3 से 4, शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते, वे नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। 5, वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। 6, लौट कर संसार में क्यों नहीं आते? इस संसार में जीव बना हुआ यह आत्मा, जीवात्मा, सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मेरे को प्राप्त होने पर यह फिर लौट कर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल यह होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। 7, इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर, इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। 8,